नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी की जाएगी। 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी होगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, प्रदेश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक, घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकों, दवाइयों और शल्य चिकित्सा पद्धतियों को सरकारी अस्पतालों में अपनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार, कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में गुवाहाटी से ये राशि जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना के तहत किसानों को अब तक 4,09,000 करोड़ से ज्यादा की सम्मान राशि डीबीटी की जा चुकी है।
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गुवाहाटी से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हुई, फरवरी 2019 में ये योजना प्रारंभ हुई थी, तब से अब तक किसानों के खाते में 4,09,000 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से डाली जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही ये राशि बढ़कर 4,27,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी।
प्रदेश में पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में रखा गया है। ये कार्यक्रम दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में होगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार डक ने बताया कि इसमें राज्य के 66,76,000 से अधिक किसानों को 1,335 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में पीएम किसान उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी उथल पुथल के बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद राष्ट्र बना हुआ है। नई दिल्ली में कल एनएक्सटी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद देश स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न बाधाओं से निपटने के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि तेल उत्पादन को बढ़ावा देने, ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि पिछले एक दशक में देश में एलपीजी बॉटलिंग क्षमता दोगुनी हो गई है।
साल 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, यानी देश के करीब करीब आधे परिवारों के पास ही एलपीजी कनेक्शन था। आज दो गुने से भी अधिक, यानी करीब 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आने के मुद्दे पर कल लोकसभा में सरकार के कदमों के बारे में बयान दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में कच्चे तेल की स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और गैस सिलेंडरों की बुकिंग से डिलीवरी की तय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये 2.5 दिन बनी हुई है। इधर प्रदेश में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने घरेलू गैस आपूर्ति पर कल जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल स्थितियां सामान्य है, जो बुकिंग हो रही है उनको टाइम पे बुकिंग है, जो सिंगल सिलेंडर है उसको 2 दिन में और जिसके डबल सिलेंडर है उसको 3 दिन में गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं। कहीं भी राजस्थान में कहीं भी आदमी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घरेलू सिलेंडर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हमारे पास फुल स्टॉक है एजेंसी के पास और पूरा का पूरा घरेलू उपभोक्ता को कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। ये तो कमर्शियल पे रोक है, कमर्शियल पे तो ये बात स्थिति है, जब कमर्शियल की एक बार जब समस्या है तो हम घरेलू उपभोक्ता जो लगभग 33-35 करोड़ भारत में घरेलू उपभोक्ता उनको गैस उपलब्ध कराना जो परिस्थिति बनी है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसमें कहीं कमी नहीं, देश का आम उपभोक्ता परेशान नहीं हो।
देश भर में खाद्य विभाग की सतर्कता टीमें गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 14 सिलेंडर जब्त किए गए। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 की समाप्ति को देखते हुए सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कार्यालयों में समयबद्ध और सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस दौरान किसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर में कल से ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी AIOC की वार्षिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। सीतापुरा स्थित JECC में हो रही AIOC के उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से नेत्र चिकित्सकों को नई तकनीकों और नवाचारों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र की नई तकनीकों, दवाइयों और शल्य चिकित्सा पद्धतियों को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अपनाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई लोग दृष्टिहीनता और दृष्टि दोष से प्रभावित हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण और गरीब वर्ग की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचार, जन जागरूकता और इच्छा शक्ति से अंधता का उन्मूलन किया जा सकता है।
मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान आज तकनीकी नवाचार में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। AI आधारित रेटिनल स्क्रीनिंग, टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल आई केयर के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। मैं इस मंच से आप सभी से आग्रह करता हूं कि ग्रामीण राजस्थान के सुदूर इलाके में कैंप लगाएं, निशुल्क जांच के नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाएं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ज्ञान, अपना अनुभव सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ें ताकि राजस्थान के हर नागरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हकदार बने।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डॉ. तारा प्रसाद दास और डॉ. एस. नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के सभी न्यायिक और राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इनमें न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इनमें बैंक, वित्तीय संस्थानों, दुर्घटना क्लेम और बिजली विभाग संबंधित राजीनामे योग्य लंबित प्रकरणों का सुलह से निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके असर से कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं। इसके असर से अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं गरज के साथ आंधी और बारिश के आसार हैं। इस बीच कई स्थानों पर कल बादल छाए रहे और मध्यम हवाएं चली। हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में भी ठंडी हवाओं का दौर बना हुआ है। कल भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर सहित 12 शहरों में दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कोटा सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने 19 से 21 मार्च के बीच भी एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिससे कुछ स्थानों पर मौसम फिर से प्रभावित हो सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी की जाएगी। 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी होगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, प्रदेश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक, घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकों, दवाइयों और शल्य चिकित्सा पद्धतियों को सरकारी अस्पतालों में अपनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार, कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।